ओम शांति। इधर आ जाओ सब कुमार। आज का स्लोगन आगे हो जाओ थोड़े और। डरो नहीं, तुम तो डर रहे हो भाई। बस आज का स्लोगन जो संतुष्ट रहते हैं, बस एक ही बात थी, पुरुषार्थी जीवन में दूसरों से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट। सब छोटे कुमार भी आज अच्छा चिंतन करेंगे। संतुष्टता की शुरुआत इस जीवन में किस संकल्प से होती है? ब्राह्मण जीवन में खास, लौकिक अलग। और बताओ। हाँ, और थोड़ा दूसरी लाइन बोल दो। यही है, हमारे दिल से ये आवाज हो, कहने की बात नहीं, कि बाबा तुम्हें पाकर, बोलो, सब कुछ पा लिया। ये आवाज हो दिल की, ये फीलिंग हो दिल की, कहने तक न हो, आत्मा तृप्त हो जाए कि जन्म जन्म की जो प्यास थी भगवान से मिलने की, उससे नाता जोड़ने की, उसके समीप आने की, वो पूर्ण हो गई। सोचो, सभी चिंतन करें। जिसको केवल देखने के लिए, एक क्षण भर के लिए हम देख लें तुम्हें, क्या क्या करते रहे हम सब? माताएं भी करती रही बहुत कुछ, घरों में भक्ति में कितनी चीजें करते रहे। कई तो बहुत ज्यादा भक्ति करते रहे, कई घर छोड़ के बाहर चले गए। प्यास थी, एक तड़फन थी, वो तड़फन हमारे अंदर ही हो सकती है, औरों के अंदर नहीं। क्यों क्यों? और बताओ क्यों? हल्दर, हल्दर ही है ना, बोलो। हाँ, कल्प पहले वाले बच्चे तो हैं ही, कल्प पहले उससे मिलन का परम सुख हमने ही पाया था। वो खींच रहा था हमें, हम द्वापर से चाहने लगे थे, एक बार तुम्हें देख लें, एक बार तुमसे मिल जाएं। ये इच्छा उनके अंदर जागृत थी जिन्होंने वो सुख पाया था। अब वो पूर्ण हुई, हुई सभी की। किस किस की हुई, जरा मैं दर्शन कर लूं। किसी की नहीं, तुम्हारी नहीं हुई, छोटों की, पता नहीं इनको भी ज्यादा कुछ हो रही है। तो जी भर के देख लिया उसे, जिसको देखा नहीं जाता। सोचो, जिसको देख नहीं सकती ये आंख, उसे हमने जी भर के देख लिया। इसका उत्तर भी चाहता हूं आपसे। देख लिया भाइयों ने? देख लिया, जी भर के उससे बातें कर ली, कर लें, कर रहे हैं, रोज करते रहें। इतना सुख ले लें कि आत्मा तृप्त हो जाए। ये सुख न यहाँ के संबंधों में है, न यहाँ की धन संपदा में है, न पद पोजीशन में है। क्या है? नहीं है। लोगों के अनुभव हैं ये। सब कुछ होते भी आत्मा अतृप्त है, कहीं ना कहीं टेंशन है। किसी को कोई कष्ट दे रहा है, किसी को कोई कष्ट दे रहा है। राज बाबा ने कहा ना, तुम्हें सबको सुख देना है, ये सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं, सुख देते हैं, हड्डी दे देते हैं यज्ञ में। हड्डी देने का अर्थ है निकाल के नहीं दे देना, हड्डी देने का अर्थ है, बोलो तुम बताओ, तुम अब ज्ञान ले रहे हो ना, हड्डी देने का अर्थ है, बोलो जानते हो तुम, हैं? बहुत सेवा कर देना, बहुत सेवा कर देगा, सेवा में डी ले नहीं, ये नहीं हमारी ड्यूटी तो पूरी हो गई अब हम नहीं करेंगे, वो नौकरी होती है। घरों में कोई ये कहता है मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, खाना पीना खा ले, रात के 11 बजे भी कोई मेहमान आ जाए, माताएं बनाती हैं या नहीं, या कहेंगे हमारी ड्यूटी तो पूरी हो गई थी 8 बजे अब नहीं खिलाएंगे। तो यज्ञ हमारा घर है, इसमें हड्डी देना माना सच्चे दिल से सेवा करना, खूब करना, इसे देवान मिट जाता है। और पीछे बाबा ने कहा था हड्डी यज्ञ में दे दी तो क्या बन गए, क्या बन गए, हड्डी के बिना कौन होते हैं, फरिश्ते। जो हड्डी नहीं देंगे वो फरिश्ते भी नहीं बनेंगे, हड्डियों को संभाल के रखेंगे ना, खराब ना हो जाएं, तो संभलेंगे भी नहीं और फरिश्ते भी नहीं बनेंगे, तो तृप्त हो जाएं। सब गहन चिंतन करना, तृप्त हुए हैं, बाबा को बहुत देख लिया, जिन्होंने अब तक नहीं देखा उनका हाल देखो। एक माता का फोन था आज, आज मैं फ्री था तो ज्यादा टाइम अपना फोन ऑन किया, 4 साल हो गए, धारणाएं भी अपना ली, लेकिन पति मधुबन नहीं आने देता, कहता है वहां जाके तुम वापस नहीं आओगी। उन्होंने कहा तो तुम भी चलो मुझे ले आना, नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां, उसकी तड़फन। मैंने कहा टीवी पे तो देखती होगी कि हाँ देखती तो हूं, पर सामने देखना है, टीवी अलग चीज है ना, सामने उसके वाइब्रेशंस कैसे बाप बन के प्यार का सागर प्यार देता है अपने बच्चों को, मिलने आता है, ज्ञान तो दे दिया अब मिलने आता है। तो ये सब पाके हम तृप्त हो गए हों, भगवान को नई सृष्टि रचते हुए देख लिया, देखा जब हम समर्पित होके यहाँ आए तो दादी जानकी भी यहाँ रहती थी, तो हम कुछ पढ़ लिख के आए थे और चीजें भी, वो सुनाती थी एक चीज, क्या था वो, कि भगवान ने सृष्टि कैसे रची, थोड़ी ये बातें आपको सुना देता हूँ। आज इंडिया की फिलोसोफी में यानी शास्त्रों में भी कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है भगवान को संकल्प उठा, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, और बहुत हो गए, मनुष्य बन गए, सृष्टि रची गई, इसको कहते हैं संकल्प से उसने सृष्टि रची, एक। ये अद्वैत सिद्धांत है भारत की फिलोसोफी का, एक मान्यता ये है। क्रिश्चियन की आपने सुनी होगी, भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई, फिर थक गया तो 7वें दिन विश्राम किया, धरती बनाई, आकाश बनाया, जल बनाया, वायु बनाई, ये सब चीजें बनाई, एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत है कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एक एक चीज को रचा, वो निमित्त संकल्प किया, ब्रह्मा के द्वारा एक एक चीज निर्माण की। और भी सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है जो बाबा ने बताया कि दुनिया अविनाशी है, ये सदा ही है, ये चक्र चलता ही रहता है, और लंबे समय के बाद सब कुछ नष्ट होगा और पुनः इसकी रचना की जाएगी। वो करोड़ों साल है, वो है 4,32,00,000, जैसे कलयुग की आयु लिखी ना 4,32,000, ये कल्प की आयु लिखी है 100 चक्र घूम जाएं चारों युगों के, उसको वहां कल्प माना गया है, 4,32,00,000। तो ये भिन्न भिन्न सिद्धांत थे, तो दादी जानकी कहा करती थी, उन्होंने भी कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि दुनिया में लोग क्या क्या कहते हैं भगवान ने संसार कैसे रचा और हम उसको संसार रचते हुए देख रहे हैं। हमें बहुत नशा होता था, कितनी गुई ये तरीका है उसका युग को बदलने का। देखो थोड़े में बाबा कर आत्माओं को राजयोग सिखाता है, ज्ञान देता है, उससे आत्माएं हो जाती हैं पावन। एक ही चीज है बस, आत्माएं पावन हो गई, उनके वाइब्रेशन से प्रकृति पावन, प्रकृति पावन, आत्मा पावन। तो प्रकृति पवित्र आत्माओं को अथाधन संपदा प्रदान कर देती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है जब वो पावन हो जाती है। और इन्हीं पवित्र वाइब्रेशन से, इसी योग की ज्वाला से पतित दुनिया ऑटोमेटिकली समाप्त होती है। इसमें बाबा कुछ नहीं करता, सच तो ये है। ये सब उसके द्वारा जो राजयोग सिखाया जाता है उससे होता है। इसलिए जो श्रेष्ठ राजयोगी बनते हैं वही बाबा के स्थापना और विनाश के कार्य में सबसे बड़ा काम करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। क्लियर है माताओं को? ऐसे नहीं बाबा ऊपर से डमरू बजाएगा शंकर का और नीचे विनाश शुरू हो जाएगा, यहाँ खोलेंगे महादेव जी और ज्वाला निकलेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं है। इनके रहस्य हैं, वो रहस्य भी आप सब जान लें। बाबा ने रहस्य बताए हैं, महादेव शंकर तपस्वी दिखाए ना, वो तुम्हारी यादगार है। जो ब्राह्मण ऐसे महान तपस्वी बन जाते हैं, महान तपस्वी चंद्रमा अर्थात चित शीतल, गले में सांप अर्थात विकारों पर संपूर्ण विजय, माला बन गए वो गले की, जो शत्रु थे वो हार सिंगार बन गए। डमरू बजेगा इसका अर्थ है शंकर जी नृत्य करेंगे तांडव नृत्य, तब विनाश होगा। हम में से बहुत आत्माएं निरंतर अतिंद्रिय सुख में आ जाएंगी, ये होगा खुशी में डांस करना और डमरू बजाना, इससे सृष्टि पर पाप और पापी समाप्त होने लगेंगे, भूकंप होने लगेंगे, सागर उछलने लगेगा। काम को जीता शंकर ने, कामरी कहते हैं उसको, काम का शत्रु कामदेव को नष्ट किया, यहां से दिखाया लाइट टिकली मस्तक से कामदेव नष्ट हुआ, उसे मोहित करने आया था। जो यहाँ काम को पूरी तरह नष्ट कर देंगे वो महादेव के समान तपस्वी कहलाएंगे। तो ये स्थिति हम सब की है, हम सब देख रहे हैं बाबा कैसे स्वर्ग रच रहा है, किनके लिए, किनके लिए पता है? सब युवकों को बाबा ने आज भी कहा, मैं तुम्हारे लिए राज्य स्थापित करने आया हूँ। ये बात सभी सुनते हैं और ऊपर से निकल जाती हैं। सोचो जरा, राज्य स्थापित कर रहा है और किसका राज? स्वर्ग का। किनके लिए? हमारे लिए। तो हमें उसके योग्य बनना है ताकि हम राज्य को संभाल सके। ये छोटी बात नहीं कहता मुरली में, पढ़ने वाले भी इस ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, सुनने वाले भी कुछ सुना कुछ नहीं सुना, बाबा ने कुछ कहा तो है, आगे बढ़ गए। सोचो इस पर, भगवान राज्य स्थापित कर रहा है। महात्मा गांधी ने राज्य स्थापित कराया भारत में, भिन्न भिन्न वंशज के राज्य स्थापित हुए भारत के इतिहास में, विदेशों के इतिहास में भी। उन्होंने कितनी मेहनत की, कष्ट सहे, मारपीट हुई, मृत्यु हुई, बलिदान हुए, और बाबा योग बल से हमारे लिए राज्य स्थापित कर रहा है। इसका नशा उसे ही चढ़ेगा, किसे किसे? जो राज्य पाने वाले होंगे। बाकी को लगेगा हाँ सतयुग का राज स्थापित हो रहा है, हम भी उधर चलेंगे। हल्के संकल्प पाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी नशे की बात है। तो हमने भगवान को इस धरती पर दिव्य कर्म करते हुए देखा है, देखा है। मैं माताओं को जगा रहा हूँ, जग नहीं रही है, ठंडी नजर आ रही है, देखा है, देखा है। तो हम तृप्त हुए, जो युगों से देखना चाहते थे वो देख लिया, जिसको सुनना चाहते थे सत्य गीता ज्ञान उससे सुन लिया, देख भी लिया, संपूर्ण सत्य जान भी लिया। हमारे लिए जो छोटी बातें हैं, संसार के विद्वानों के लिए वो जटिल समस्याएं हैं। अब तक भी मैं कौन हूँ इसका ही पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मन बुद्धि ब्रेन ये अलग अलग चीजें हैं, ये क्या हैं, किसी को क्लियर नहीं है, खोज हो रही है। तो संपूर्ण सत्य ज्ञान पाकर भी हम तृप्त हुए, दिल से आवाज निकले आज चिंतन करना, तो बाकी संतुष्टि आ जाएगी जीवन में। नहीं तो संतुष्टि आती नहीं है। प्रभु पालना मिली हम सबको, किस किस को मिली? अच्छा, थोड़ी माताओं को मिली, बाकी को भी मिलनी बाकी है। प्रभु पालना मिली, खिलाया भी उसने है। भगवान खिलाएगा तो क्या खिलाएगा? एक गरीब अपने बच्चों को क्या खिला सकता है, साहूकार क्या खिला सकते हैं, और भगवान क्या खिलाएगा सोच लो। सूखी रोटी भी दे दे तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाए। उसने पाला है हम सबको, प्यार की पालना दी है, सुख दिए हैं बहुत, पढ़ाया है, सद्गुरु बनकर बहुत राह दिखाई है, साथी बन गया हमारा। तो सभी अंदर से संकल्प करें, हम बोलो फिर से, हम क्या तृप्त हुए। सचो सभी गहराई से। तो ये मन की तृष्णाएं, मन की उलझन, बहुत सारी चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी। और कुछ नहीं तो मनुष्य को अनेक चीजें सेवाओं में भी चाहती हैं, मुझे अवसर नहीं मिलता, मेरे में बहुत योग्यता है, मुझे कोई चांस नहीं देता है, मेरी योग्यताएं ऐसे ही रह गई। देखो उन्हें चांस मिल रहा जिनको योग्यता ही नहीं है, जो पढ़े लिखे ही नहीं है, मैं पढ़ी लिखी, मुझे चांस ही नहीं मिल रहा, असंतोष रहता है। भगवान को पाने का संतोष समाप्त, छोटा सा संतोष प्रबल। ये सच्ची बातें हैं ना। कोई आए मेरे पास, मैंने कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, लेकिन मुझे कंप्यूटर की सेवा ही नहीं मिलती। मैं सुनता हूँ सब उनकी, मैंने कहा मिलेगी, पर जब वो थोड़े खुश हो जाते हैं तब पूछता हूँ कि जब भक्ति करते थे, भगवान को बुलाते थे, तो ये कहा था क्या कि जब आप आओ मुझे कंप्यूटर की सेवा देना? कहा था? कंप्यूटर ही नहीं थे तब तो ये कहा था, हे प्रभु जब तुम इस धरा पर आओ हमें अपना लेना। तृप्त होना है। अनेकों के असंतुष्ट होने के अलग अलग कारण रहते हैं, सब कारणों को समाप्त करके संतुष्ट होना है। मैं माताओं को हंसी की बात सुना दूं, एक कमरे में यहाँ कितनी कितनी माताएं सोती हैं? 22-25। संतुष्ट रहती हैं या नहीं? या भाई यहाँ आ गए तो साथ रहना ही पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है, सेवा करनी है तो मरना पड़ेगा, घर के सुख सुविधाएं भूलनी पड़ेंगी, साथ सोना है, कोई बातें करता है, कोई लाइट जलाता है। नीचे की एक शिकायत आई, कन्याएं रहती हैं आजकल नीचे कहीं रह गई, रात को 2 बजे तक फोन पे बातें करती हैं। एक जो योगी बनना चाहती है वो परेशान रहती है 2 बजे। सोचने की बात है, वो लड़कियां 2 बजे किसको बात करती होंगी? सोच लो, ये आपका काम है सोचना। सवेरे फिर 8-9 बजे तक सोती हैं, ये है उनका जीवन। तो ऐसी आत्माएं माया को जीतेंगी? बिल्कुल नहीं, जाना है उनको। मैंने साफ कह दिया, थोड़ी इंतजार करो, वो सब मैदान छोड़ के चली जाएंगी, दूसरे घर में जाएंगी वो, क्योंकि ये जीवन बिना ज्ञान और योग के आगे नहीं बढ़ सकता। कोई कितना भी क्वालिफाइड हो, यहाँ उस क्वालिफिकेशन का कोई महत्व नहीं। यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए ज्ञान और योग की। जिसके पास वो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन माना योग्यता, जिसके पास वो योग्यता नहीं है, वो यहाँ हार खा के वापिस जाते हैं, और जाने वाले हैं बहुत सारे। इसलिए अपने को तृप्त करें। माताओं से मैंने पूछा था, माताएं मुस्कुरा रही थी। संतुष्ट रहने के लिए क्या करना होगा? आप 25 माताएं एक बड़े हॉल में सोती हैं, बिल्कुल नेचुरल बात है। कोई कैसी कोई कैसी, कोई खुद भी नहीं सोएगी, दूसरों को भी नहीं सोने देगी, ट्यून बजाएंगी रात को। क्या चाहिए बोलो, माताएं बताओ, अनुभव बताओ, क्या चाहिए हैं? स्वीकार करना। भाई घर में तो आप एक दो सोएंगे, यहाँ ज्यादा सो रहे, कोई कैसा कोई कैसा, स्वीकार करना। कोई कैसे घर से आई है, कोई कैसे घर से, जरूरी नहीं सभी बहुत सफाई रखती हों, जरूरी नहीं सबको यहाँ के मैनर्स का ज्ञान हो, कोई कैसे कोई कैसे, है सब हमारा परिवार। तो स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करें, संतुष्ट रहेंगे। हर जगह चित्त को शांत करने से संतुष्टि आती है। नहीं तो संसार में भी क्या हो रहा है, संबंधों में भी असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे केस आते हैं सामने, जिनको देखकर लगता है, बाबा को कहते हैं कि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, जल्दी खत्म कर दो, मनुष्य मनुष्य नहीं रहा है। अनेक अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अनेक पाप के गंदे नाले में बहते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप का गंदा नाला कौन सा है बोलो? काम वासना, गंदा नाला, जिसको लोग समझ ही नहीं रहे कि वो पाप कर रहे हैं, और जब सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। पंजाब में हम गए, ऐसे एक दो केस सामने आए कि दिल दहल जाता है। तो हमें पहला काम करना है संबंधों में संतुष्टि। इसमें ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है कि दूसरे से हम ऐसा अच्छा व्यवहार रखें जो दूसरे जीवन में खुश रहें। भाई बहने सबको ये ध्यान देना है, दूसरे हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें ये सीखना है हम संतुष्ट रहें। सहन भी करना पड़ेगा। अब सहन करना अच्छा या परेशान होना अच्छा? सहन करके आगे बढ़ें तो संबंधों में भी सुख रहेगा और उलझन नहीं होगी। जब भी मैं फोन ऑन करता हूँ तो माताओं के फोन आते हैं, और रोज कम से कम 4-5 फोन ऐसे आ जाएंगे, हमारा बच्चा शराब पीने लगा, कुछ काम नहीं करता, लड़ता है, मेरा हिस्सा मुझे जल्दी दो। अब हिस्सा उसे दे दे, अभी 20 साल का ही है, खा पी के समाप्त कर देगा। तो युवकों को भी मैं एक बात कहूँ, बहुत अच्छे अनुभव की। दिल्ली के एक भाई ज्ञान में है, मिले अभी, आए थे यहाँ, मैं जानता हूँ उनको, उनके लड़के को भी जानता हूँ। कहते थे बड़े नशे से कि देखो मेरा लड़का कैसा अच्छा निकला। एक ही लड़का है, आयु केवल 22 साल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। वो रोज मुझे कहता है, पापा मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ मैं दूंगा। कहा ये बिल्कुल न सोचो कि आपका हिस्सा मुझे लेना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद अपना आगे बढ़ूंगा। बताया कि वो हर मास इतने लाख कमा रहा है। तो मैं हमेशा माताओं को भी खास ये ध्यान दिलाता हूं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो। एक और केस सुनाऊं आज का ही, पंजाब में हम थे, एक ने फोन किया फिर से, मेरा लड़का ऐसे ही छोटा 19 साल का केवल, न पढ़ता न कुछ काम करता, रात को 1 बजे आता है। मुझे बहुत चिंता है उसकी, बीमार हो गई हूं मैं। मैंने उससे हंसी में पूछा, तुम्हारे पति को उसकी चिंता नहीं है? वो भी तो बाप है ना उसका। कहा उसको कोई चिंता नहीं, वो अपनी नौकरी में रहता है, मस्ती से सवेरे जाता है, शाम को आता है। मैंने उसको हंसी में कहा, तुम ज्ञानी सारा दिन चिंतित, वो ज्ञानी नहीं है और मस्त रहता है, कौन ज्ञानी हुआ? कहा क्या करूं, मैं माँ हूं। मैंने कहा वो भी तो बाप है, क्यों चिंताओं में डूबी जा रही हो? कहा मैं नौकरी भी करती हूँ लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, उसके बारे में चिंतित रहती हूँ। चिंताओं से बच्चे सुधरेंगे या किसी और चीज से? बोलो, बच्चे बहुत बैठे, कैसे सुधरोगे तुम? सुधर गए ना? ये बिगड़े हुए नहीं, ये तो सुधरे हुए बच्चे हैं। घर के वाइब्रेशंस अगर योग युक्त बना दिए जाएं, तो कोई भी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाएगा। अब माताएं योग तो करती नहीं, चिंताएं में जलती हैं बेचारी, तबीयत भी बिगड़ता है। समझ रही या नहीं माताएं? चिंताओं से काम नहीं चलेगा, बीमार होने से काम नहीं चलेगा। घर के वातावरण को योग युक्त बनाओ। मैंने उसे यही कहा, चिंताओं में तुम 4 घंटे रोज देती हो, 1 घंटा योग के लिए दे दो घर में, स्पेशल घर में, और विशेष योग एक स्वमान से करेंगे सभी, सभी सीख लेंगे बाबा का महावाक्य बहुत पुराना, किसी भी स्थान पर यदि तुम इस स्वमान में बैठो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो वहां का वातावरण बदल जाएगा। सूर्य से किरणें फैलती है ना, तुमसे भी किरणें फैलेंगी, अंग अंग से किरणें फैलेंगी, वातावरण बदल जाएगा, चार्ज हो जाएगा। माताओं को तो बस थोड़ा सा ही काम करना, भोजन बनाते मैं परम पवित्र हूं, और बाबा का आह्वान करो अपने घर में, और 3 बार 20-20 मिनट योग कर लो, 1 घंटा हो गया, आपको कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पति भी बहुत अच्छा चरित्रवान रहेगा, बच्चे भी योग्य बनते जाएंगे। अगर जो घर में माताएं ये करती हैं, उनकी समस्याएं समाप्त होती हैं। करती हैं माताएं, कई ऐसा नहीं करती, लेकिन थोड़ी हैं जो करती हैं, बाकी इधर उधर की बातों में काम धंधों में लगी रहती हैं। संतुष्ट आत्मा बनना है, जरूरी है ना? नहीं तो अगर बच्चे बिगड़ रहे हों, तो कोई कितना भी कहे कि बेफिक्र बादशाह रहो, रहेंगे नहीं। बच्चे योग्य बन जाएं, कितने परिवार हैं बाबा के पास आने वाले जिनके बच्चे बहुत योग्य हैं, बड़े हो गए, कहा शादी बिल्कुल नहीं, माँ बाप ने भी एक दिन भी प्रेशर नहीं डाला कि शादी करो, शादी बिल्कुल नहीं, जीवन आदर्श है, बड़े हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। कितने परिवार हैं आज भारत में, विदेशों में तो कम है ऐसे, भारत में बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को अच्छा रखा, उनके परिवार के माहौल भी बहुत अच्छे हैं। समझ रही माताएं? समझ रही हैं? यहाँ भी बहुत बैठी होंगी जिनको बच्चों की चिंता है। कईयों को तो चिंता करने की आदत होती है, लेकिन कईयों की चिंता राइट होती है, बिल्कुल ठीक चिंताएं होती हैं। कन्याएं कोई ऐसी हो, उसकी चिंता होती है, जो बिल्कुल न सुनती हो माँ बाप का और गलत राह पे जाती हो, तो चिंताएं होती हैं। लेकिन घर का माहौल ऐसा बनाओ, सभी जान लें इस बात को, स्वमान में रहने से हमारे बोल में प्रभाव आ जाता है। सुने आप बाबा की मुरलियों से स्वमान की स्थिति, और दूसरे को आत्मा देखकर बात करो, आपके बच्चे सम्मान सहित आपकी बात स्वीकार करेंगे। लेकिन आदेश से बात करेंगे, 1 बजे आता कल से बिल्कुल नहीं आना, दरवाजा बंद कर लूंगी, लेकिन खोल के रखती है बेचारी, क्योंकि आना है बच्चे को। ऐसी कुछ माताएं भी हैं पावरफुल, 10 बजे के बाद आए, दरवाजा बंद रहेगा, कहीं उन्हीं के दोस्तों के पास जाना, नहीं खोला, 2-3 दिन में ही सुधर गया। दोस्त थोड़ा ही खाना खिलाएंगे, दोस्त तो कैसे हैं आपको पता ही है ना, सब स्वार्थी हैं। इसलिए स्वमान और आत्मिक दृष्टि से अपने परिवार का कल्याण करो सभी। तो हमें तृप्त होना है, तृप्त होने के लिए संबंधों के अलावा तीसरी बात है, इच्छाएं कम। सांसारिक इच्छाएं यदि बहुत हैं तो आत्मा तृप्त नहीं होती, और अतृप्ति से क्या नुकसान होता है, असंतुष्टता से, सभी बच्चे भी समझ ले, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, मन की शक्तियां नष्ट होती जाएंगी, मन कमजोर होता जाएगा। मन को कमजोर नहीं करना है, मन कमजोर हुआ तो बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई भी ढीली हो जाएगी, बुद्धि की जो योग्यताएं हैं, एफिशिएंसी है, वो डाउन होती जाएगी। इसलिए सभी को ध्यान देना है, हमें संसार की व्यर्थ इच्छाओं के पीछे भटकना नहीं है, नहीं तो बाबा ऊपर देखकर मुस्कुराएगा, युगों से मुझे बुलाते थे और जब मैं आया अब भटक रहे हैं। वो सब कुछ देने आया है, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन हम स्थिर आत्मा बने। आप सबने सुने हैं बाबा के ये महावाक्य, मैं रिपीट कर देता हूँ, संतुष्ट आत्मा का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सबसे गहरा महावाक्य है संतुष्टता का प्रकाश, लाइट है इसमें भी, चंद्रमा की तरह शीतल करने वाली लाइट है। संतुष्ट आत्मा बाप को बहुत प्रिय है। संतुष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। 1-2 मुरली चली है बाबा की, संतुष्टता और प्रसन्नता, प्रॉपर्टी और रॉयल्टी। प्रसन्नचित व्यक्ति रॉयल लगता है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत आकर्षक हो जाती है। तो संतुष्ट आत्मा ही योगी युक्त रहती है। और एक बाबा का और गहरा महावाक्य है, संपूर्ण संतुष्टता ही संपूर्ण अवस्था है। ये बड़ी चीज हो गई, संपूर्ण संतुष्ट हम किस तरह होते हैं, जब बाबा से सब खजाने प्राप्त कर लेते हैं। वो खजाने हमने कई बार यहाँ गिनाए आपको, सुख शांति बहुत बड़ा खजाना है, खुशी और दुआएं बहुत बड़े खजाने हैं, भगवान की दुआएं मिलती हैं, गुण और शक्तियां बहुत बड़े खजाने हैं, बाबा का प्यार हमारा बहुत बड़ा खजाना है, समय और संकल्प बहुत बड़े खजाने हैं। इन खजानों में जैसे जैसे हम तृप्त होंगे, भरपूर होंगे, आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। तो सभी इन चीजों पर भी बहुत ध्यान दें, सेवा करते हुए। मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है, दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं रहा है, इसमें भी असंतोष होता है। किसी के बुरे व्यवहार को देखकर भी आत्मा असंतुष्ट होती है। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ आपको, सच्चा ये बहुत उदाहरण आते हैं ऐसे, ये भी माताओं के उदाहरण है। माताओं को बुरा तो नहीं लगता। माताजी ने फोन किया, ये बिना बताए मेरा नाम क्या है पहला ही महावाक्य उच्चारण किया, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा ये तो बता दो तुम हो कौन के, हूं तो आत्मा। अरे मैंने कहा वो तो मुझे पता है। मैं पूछा किसने परेशान किया? परेशान आत्मा हूं मैं। किसने परेशान किया? मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। सास बहू के झगड़े तो प्रसिद्ध है ना। मैंने उसको कहा ध्यान से जरा सोचो, वो परेशान करती है पर परेशान तो तुम होती हो ना, या कोई और होता है? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती वो परेशान करे और तुम परेशान न हो तो वो परेशान हो जाए? कि मेरी सास तो परेशान ही नहीं होती। कहा यही कि कैसे होगा, वो तो बुरा बोलती है मुझे, ये भी कह देती है घर से निकलो मैं घर की मालिक हूं, अब क्या करूं मैं, क्या करूं? परेशान कौन होते हैं? जो अपनी शान में नहीं रहते। शान माना स्वमान। अब परेशान होते होते वो शान पूरी तरह भूल जाती है ना। इतना परेशान हो गए, सालों साल बीत गए उसे तंग करते हुए, इसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान और योग का बल चाहिए। छोटी बात नहीं, हमने भी कह दिया आपने भी सुन लिया कि परेशान करने वाला परेशान करे हम न हो, पर यह संभव भी है। सहज नहीं है, मेहनत का काम है, पर संभव है। और इसको संभव बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सहज भाव से जीवन जीना सीख लें। एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, टॉपिक है हम सबके लिए, सहज भाव से जीवन जीना। सब बच्चे भी सीख लें, सहज भाव से पढ़ना, टेंशन से नहीं। परीक्षा आ गई, सहज भाव से जाना, सहज भाव से अपने दोस्तों के साथ रहना। सब एक से तो नहीं है, सब अलग अलग होंगे, सब आत्माएं अलग अलग, सबका सोचना अलग, व्यवहार अलग, संस्कार अलग। कोई लड़ने वाला होगा, कोई प्यार से चलने वाला होगा। ये जानते हुए कि ये संसार अलग अलग आत्माओं का एक खेल है, हमें हल्का होना है, सहज भाव से जीवन जीना। इसकी प्रैक्टिस शुरू करें सभी। यहाँ तो आप सहज भाव से रहते हो, वे रोटी बनाने का टाइम है वहाँ पहुँच गए, सब्जी काटने का टाइम है वहाँ पहुँच गए, सवेरे उठे सहज भाव से योग में चले गए। लेकिन घरों में मेहमान आ गए हैं, काम ज्यादा है, टेंशन नहीं, सहज भाव से काम करें। समझ रहे हैं ना? सहज भाव तो काम जल्दी हो जाएगा, टेंशन से काम करेंगे काम में देर लगेगी। ये रहस्य सभी को जान लेना है। जितना मन तेज चलेगा उतना ही कार्य धीमा होगा, मन धीमा चलेगा कार्य तेज होगा, जल्दी होगा। अब वैसे ही देखो, युवक बैठे बाइक चलाते हैं, युवक तेज तराक सोचते जल्दी पहुंच जाएं, पर जल्दी नहीं पहुंचते, कोई तो बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन आराम से चलाओ, एंजॉय करो ड्राइविंग को, बिफोर टाइम पहुंचेंगे, सेफली पहुंचेंगे। हर कार्य को एंजॉय करना, इंग्लिश का शब्द है, हर कार्य का आनंद लेना, हर कार्य का सुख लेना। टेलरिंग में भी बहुत भाई आए हैं ना, कौन कौन आए हैं टेलरिंग वाले? दो तीन, तीन चार बैठे हैं। आनंद लेना इसका, सहज भाव से करना। देखो संगठन में भी आप रहते हैं, संतुष्टता पूर्वक रहना। अलग अलग तो होते हैं, हम भी सबकी बात देखते आए सुनते आए, इंचार्ज कहेगा ऐसे कर दो, गलत भी कह देता कभी कभी, ऐसे कर दो। अब वो व्यक्ति ईमानदार है, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा, वो इंचार्ज है कहेगा निकल जाओ यहां से, टकराव हो जाएगा। अब बेचारे ईमानदार व्यक्ति परेशान होगा, उसकी कोई सुनेगा भी नहीं क्योंकि वो इंचार्ज नहीं है। ऐसे में भी बैलेंस रखना, संतुष्ट रहना, ये बहुत बड़ी कला है और ये बहुत बड़ा ज्ञान भी है। जब ज्ञान सरोवर बन रहा तो हम उन सबको क्लास कराते थे ताकि वो ट्रेंड हो जाए, तो मैं एक चीज एक टॉपिक रखा करता था, कभी कभी टॉपिक खराब है लेकिन आपको बता देता हूँ, अगर तुम्हारा इंचार्ज कम बुद्धि का हो और तुम बुद्धिमान हो तो क्या करोगे, उसके नीचे काम करना तुम्हें, वो तुम्हें हटा सकता है तुम उसे नहीं, क्या करो, जो मिलन रहे बहुत अच्छा, बैलेंस रहे जीवन में, ये एक टॉपिक था। तो हम सभी को जो इंचार्ज हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पाप के खाते में जाता है और एक ना एक दिन वो पाप उजागर अवश्य हो जाता है। इसलिए अथॉरिटी मिली है सबको सुख देने के लिए, प्यार बांटने के लिए, काम कराने के लिए। ओम शांति। चलो संतुष्ट आत्मा बनकर इस अभ्यास को करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं।
प्रभु का ध्यान कीजिए।